नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, क्लाउज़ इगलबर्गर की पुस्तक C++ सॉफ्टवेयर डिजाइन। उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर के लिए डिजाइन सिद्धांतों और पैटर्नों पर केंद्रित एक व्यावहारिक तकनीकी मार्गदर्शिका है। इसका विषय केवल आधुनिक C++ की भाषा सुविधाएं या सिंटैक्स नहीं, बल्कि उन फैसलों का अनुशासन है जिनसे बड़े कोडबेस को बदलने, विस्तार देने और परीक्षण करने योग्य बनाया जाता है। लेखक सॉफ्टवेयर डिजाइन को निर्भरताओं, अमूर्तताओं और जिम्मेदारियों के सुविचारित प्रबंधन के रूप में रखता है। पुस्तक क्लासिक डिजाइन पैटर्नों को आधुनिक C++ के संदर्भ में फिर से जांचती है, जहां वैल्यू सेमेंटिक्स, टेम्पलेट कॉन्सेप्ट्स और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पारंपरिक इनहेरिटेंस आधारित समाधानों के विकल्प दे सकते हैं। इसमें सॉलिड सिद्धांत, UML, स्ट्रेटजी, विजिटर, ऑब्जर्वर, अडैप्टर, ब्रिज, डेकोरेटर और सिंगलेटन जैसे विषय शामिल है। इसका उद्देश्य पाठक को किसी पैटर्न की यांत्रिक नकल सिखाना नहीं, बल्कि समस्या, विकल्प, लागत और डिजाइन परिणाम के आधार पर उचित रूप चुनना सिखाना है। इसलिए यह अनुभवी C++ प्रोग्रामरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, निर्भरताओं का प्रबंधन सॉफ्टवेयर डिजाइन का केंद्रीय प्रश्न। पुस्तक का मूल तर्क है कि किसी प्रोजेक्ट की दीर्घकालिक गुणवत्ता उसके फीचर सेट से अधिक उसके डिजाइन पर निर्भर करती है। डिजाइन का व्यावहारिक अर्थ है यह तय करना कि कौन सा घटक किस दूसरे घटक को जानता है, किस पर निर्भर है और परिवर्तन होने पर उसका प्रभाव कितनी दूर तक जाएगा। जब बिजनेस नियम, डेटा भंडारण, यूजर इंटरफेस और निम्न स्तरीय तकनीकी विवरण सीधे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब छोटा परिवर्तन भी जोखिमपूर्ण हो जाता है। इगलबर्गर इस स्थिति का समाधान अमूर्तताओं और न्यूनतम आवश्यक निर्भरताओं के माध्यम से खोजते हैं। उद्देश्य केवल फाइलों या क्लासों की संख्या घटाना नहीं है, बल्कि ऐसी सीमाएं बनाना है जिनके भीतर किसी कार्यान्वयन को बदला जा सके। इस दृष्टि में अच्छा डिजाइन परिवर्तनशीलता का अनुमान लगाने से शुरू होता है। हर चीज को भविष्य के लिए सामान्यीकृत करना भी खराब डिजाइन हो सकता है, क्योंकि अनावश्यक अमूर्तता समझ और रखरखाव की लागत बढ़ाती है। इसलिए पुस्तक पैटर्नों को तैयार नुस्खे नहीं मानती, वे निर्भरता की दिशा, विस्तार के बिंदु और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने की भाषाएं हैं। पाठक को यह परखने की आदत विकसित करनी होती है कि प्रस्तावित डिजाइन वास्तव में किस बदलाव को सस्ता बनाता है और बदले में कौन सी जटिलता स्वीकार करता है। यही कसौटी मेंटेनेबिलिटी, चेंजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी को ठोस इंजीनियरिंग गुणों में बदलती है। दूसरा, क्लासिक पैटर्नों को आधुनिक C++ की वैल्यू सेमेंटिक्स से पुनर्विचार। पुस्तक की विशिष्टता यह है कि वह गैंग ऑफ फोर परंपरा के पैटर्नों को केवल क्लास, इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन के पुराने ढांचे में प्रस्तुत नहीं करती। स्ट्रेटजी, विजिटर, कमांड, अडैप्टर, ऑब्जर्वर, ब्रिज, प्रोटोटाइप और डेकोरेटर जैसे पैटर्न पहले उस समस्या और उनके पारंपरिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रूप के संदर्भ में आते हैं। फिर आधुनिक C++ की क्षमताओं के साथ वैकल्पिक कार्यान्वयन देखे जाते हैं। इससे पाठक पैटर्न के आशय और उसके किसी एक ऐतिहासिक कोड रूप के बीच अंतर समझता है। वैल्यू सेमांटिक्स का महत्व इस अंतर में स्पष्ट होता है। जहां संभव हो, ऑब्जेक्ट को वैल्यू की तरह रखना स्वामित्व और जीवनकाल को समझने में सरल हो सकता है। टेम्पलेट आधारित कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल डिस्पैच से बचा सकता है और कुछ परिस्थितियों में प्रदर्शन तथा स्थानीय तर्क क्षमता सुधार सकता है, लेकिन यह हर जगह श्रेष्ठ नहीं है। कंपाइल टाइम बाइंडिंग से बाइनरी आकार, कंपाइलेशन लागत या लचीले रन टाइम प्रतिस्थापन के प्रश्न पैदा हो सकते हैं। इसके विपरीत रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अलग कार्यान्वयनों को एक समान इंटरफेस के पीछे रखने में उपयोगी रहता है, हालांकि उसमें अप्रत्यक्षता और अक्सर पॉइंटर आधारित प्रबंधन आता है। पुस्तक का उपयोगी सबक यह है कि आधुनिकता का अर्थ हर वर्चुअल फंक्शन हटाना नहीं, बल्कि समस्या की परिवर्तनशीलता के अनुसार सही पॉलीमॉर्फिज्म चुनना है। तीसरा, सॉलिड सिद्धांत और अमूर्तता को नियमों के बजाय डिजाइन जांच के रूप में समझना। सॉलिड सिद्धांतों का उल्लेख अनेक प्रोग्रामिंग पुस्तकों में मिलता है, पर उनका सही प्रयोग अक्सर हर व्यवहार के लिए इंटरफेस और हर विस्तार के लिए क्लास बनाने तक सीमित हो जाता है। यह पुस्तक उन्हें निर्भरताओं और जिम्मेदारियों की गुणवत्ता जांचने के साधन के रूप में रखती है। उदाहरण के लिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ केवल छोटी क्लास नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या किसी इकाई को बदलने के कारण एक ही प्रकार के हैं या अलग हितों और अलग बदलावों को एक जगह बांध दिया गया है। इसी तरह, ओपन प्योस्ट विचार का लक्ष्य हर अनुमानित विस्तार के लिए पहले से फ्रेमवर्क बना देना नहीं है। लक्ष्य उन जगहों पर स्थिर इंटरफेस या उचित विस्तार बिंदु उपलब्ध कराना है जहां बदलाव वास्तविक और सार्थक है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उच्च स्तरीय नीति को निम्न स्तरीय विवरण से अलग रखने का रास्ता देता है। मगर अमूर्तता तभी उपयोगी है जब वह व्यवहार का साफ अनुबंध व्यक्त करे। केवल किसी ठोस क्लास के आगे इंटरफेस जोड़ देने से डिजाइन बेहतर नहीं होता। उस तक UML और डिजाइन भाषा को भी संचार के उपकरण की तरह देखती है। आरेख और नामकरण का उद्देश्य वास्तुकला के निर्णय को साझा और समीक्षा योग्य बनाना है, न कि दस्तावेजीकरण की रस्म निभाना। इस प्रकार सिद्धांत, पैटर्न और संचार एक ही प्रश्न से जुड़े हैं, क्या सिस्टम का आशय स्पष्ट है और क्या उसका परिवर्तन नियंत्रित है। चौथा, टाइप इरेजर से रन टाइम लचीलापन और इंटरफेस सीमा का निर्माण टाइप इरेजर पुस्तक के उन्नत और उल्लेखनीय विषयों में है। इसका मूल उपयोग ऐसी स्थिति में होता है जहां अलग अलग ठोस प्रकार एक जैसा व्यवहार दे सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही स्थिर इनहेरिटेंस पदानुक्रम में बांधना आवश्यक या वांछनीय नहीं है। टाइप इरेजर एक छोटे सार्वजनिक इंटरफेस के पीछे ठोस प्रकार की पहचान छिपाता है। परिणामस्वरूप क्लाइंट को उस व्यवहार से काम रहता है जिसकी उसे जरूरत है, न कि प्रदाता के वास्तविक प्रकार से। यह तकनीक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और टेम्पलेट आधारित डिजाइन के बीच एक उपयोगी सीमा बना सकती है। टेम्पलेट से सामान्य कोड और स्थैतिक जांच के लाभ मिलते हैं, जबकि एरिस्ट इंटरफेस क्लाइंट को प्रकारों की बढ़ती विविधता से बचा सकता है। पुस्तक इस विषय में केवल अवधारणा नहीं बताती, बल्कि अलग कार्यान्वयन विकल्पों, प्रदर्शन विचारों और अनुकूलन के प्रश्नों पर भी ध्यान देती है। इससे स्पष्ट होता है कि डिजाइन निर्णय में एब्स्ट्रैक्शन की सुविधा के साथ उसके रन टाइम और मेमोरी प्रभाव भी दिखने चाहिए। फिर भी टाइप इरेजर सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। यह कोड की प्रत्यक्षता कम कर सकता है, डिबगिंग कठिन बना सकता है और इरेज्ड ऑपरेशनों तक ही पहुंच सीमित कर देता है। सही उपयोग तब है जब सार्वजनिक सीमा को स्थिर रखना, विविध प्रकारों को स्वीकारना और कार्यान्वयन विवरण को अलग रखना वास्तव में आवश्यक हो। पुस्तक इसे चतुर तकनीक के बजाय नियंत्रित निर्भरता के डिजाइन साधन के रूप में स्थापित करती है। अंत में डेकोरेटर और सिंगलटन के माध्यम से विस्तार तथा परीक्षण योग्यता की सीमाएं। डेकोरेटर पैटर्न उस समस्या पर केंद्रित है जहां किसी ऑब्जेक्ट में व्यवहार जोड़ना है, पर हर संयोजन के लिए नई सब क्लास बनाना उचित नहीं। रैपिंग के माध्यम से जिम्मेदारियों को पर्दों में जोड़ा जा सकता है। यह कंपोजिशन को इनहेरिटेंस पर प्राथमिकता देने की व्यापक डिजाइन सोच से जुड़ता है। फिर भी डेकोरेटर तभी स्पष्ट रहता है जब उसका इंटरफेस और ऑब्जेक्ट की पहचान संबंधी अपेक्षाएं समझी जाए। बहुत अधिक पर्दे नियंत्रण प्रवाह और डिबगिंग को कठिन बना सकती है, इसलिए पैटर्न का लाभ विस्तार में है, न कि किसी भी छोटे व्यवहार को अलग रैपर बनाने में। सिंगलटन पर पुस्तक का रुख खास तौर पर व्यावहारिक है। इसे डिजाइन पैटर्न या उपयोगी अमूर्तता मानने के बजाय लेखक इसे इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगलटन अक्सर वैश्विक पहुंच, छिपी निर्भरता और परीक्षण में कठिनाई ला सकता है। यदि किसी घटक को हर जगह सीधे सिंगलटन से प्राप्त किया जाता है तो उसकी वास्तविक जरूरतें उसके इंटरफेस में दिखाई नहीं देती और नकली कार्यान्वयन लगाना मुश्किल होता है। पुस्तक सिंगलटन को पूर्ण निषेध के विषय के रूप में नहीं रखती, वह परिवर्तन और टेस्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर उसके उपयोग का मूल्यांकन करती है। यह संतुलन बताता है कि पैटर्नों को प्रतिष्ठा या बदनामी से नहीं, उनके निर्भरता प्रभाव, जीवनकाल और परीक्षण लागत से आंकना चाहिए। निष्कर्ष में C++ सॉफ्टवेयर डिजाइन उन डेवलपरों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनके पास भाषा की बुनियादी समझ से आगे का अनुभव है और जो बड़े लंबे समय तक चलने वाले कोडबेस के वास्तु निर्णयों को बेहतर समझना चाहते हैं। पाठक को टेम्पलेट, क्लास, मूव सेमांटिक्स और आधुनिक C++ की सामान्य जानकारी होने पर उदाहरणों और विकल्पों का लाभ अधिक मिलेगा। शुरुआती प्रोग्रामर के लिए यह प्राथमिक भाषा पाठ्य पुस्तक नहीं है, क्योंकि इसका केंद्र सिंटैक्स सिखाना नहीं, डिजाइन के परिणामों पर तर्क करना है। इस पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक किसी पैटर्न का नाम पहचानने से आगे बढ़कर उसकी आवश्यकता, लागत और आधुनिक रूपों का मूल्यांकन करना सीखता है। वह यह पूछ सकता है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अमूर्तता किस निर्भरता को हटाती है और क्या प्रस्तावित लचीलापन वास्तविक बदलाव की जरूरत से मेल खाता है। टाइप इरेजर तथा एक्सप्रेशन टेम्पलेट्स जैसे विषय उन्नत डिजाइन संभावनाओं का विस्तार करते हैं, जबकि डेकोरेटर और सिंगलटन जैसे परिचित विषय निर्णयों को अधिक सूक्ष्म बनाते हैं। समान श्रेणी की कई पुस्तकों से इसका अंतर क्लासिक पैटर्नों की सूची भर देने के बजाय उन्हें आधुनिक C++ की वैल्यू सेमांटिक्स, टेम्पलेट और प्रदर्शन संबंधी विचारों के साथ तुलना में रखना है। यह न तो पैटर्नों को अनिवार्य समाधान बताती है, न आधुनिक फीचरों को अपने आप में श्रेष्ठ। इसकी स्थायी उपयोगिता इसी संतुलित दृष्टि में है जहां डिजाइन का लक्ष्य न्यूनतम निर्भरता, स्पष्ट आशय और नियंत्रित परिवर्तन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्लाउस इगलबर्गर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।